नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने सहित विभिन्न मुद्दों पर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं और आकांक्षाओं का उल्लेख किया। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा शांति के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। ईरान और इसराइल में छठे दिन भी संघर्ष जारी। ईरान के सर्वोच्च नेता के करीबी सलाहकार अली शादमानी की मौत। मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान। और तीरंदाजी में सिंगापुर में जूनियर एशियाई कप लीग 2 में भारतीय पुरुष तथा महिला टीमें फाइनल में 2 पदक पक्के। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला द सिल्वा और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि भारत तथा कनाडा के द्विपक्षीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है और दोनों देशों को लोकतंत्र मजबूत करने के साथ साथ मानवता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने कहा कि वे भारत और कनाडा के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।
कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है, भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे।
दोनों नेताओं ने उच्चायुक्तों की बहाली पर भी चर्चा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा लोकतंत्र, स्वतंत्रता तथा कानून के शासन में मजबूत विश्वास की डोर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत को नियमित रूप से शामिल किया जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समूह के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया के नेताओं के साथ भी कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने प्रमुख क्षेत्रों में भारत तथा जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने के तरीकों पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यापार और अर्थव्यवस्था, हरित हाइड्रोजन, पोत निर्माण तथा संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी के माध्यम से सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा की। श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी अलग से बैठक की। उन्होंने व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत के बाद श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंध काफी मजबूत हो रहे हैं, जो व्यापार तथा वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति में परिलक्षित होता है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ भी गहन विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा की अपनी सफल यात्रा पूरी की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कनाडा के लोगों को धन्यवाद दिया और G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए कनाडा सरकार के प्रयासों की सराहना की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता लाने के लिए उच्चायुक्तों की शीघ्र बहाली से शुरू करते हुए कुछ कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार, आपसी संपर्क और आम लोगों के बीच संबंधों के विषय में वरिष्ठ स्तर की चर्चा फिर से शुरू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश सचिव ने स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया।
Discuss the importance of the India-Canada relationship, which is based on shared values, democracy and the rule of law, people-to-people contact and many other commonalities. The Prime Ministers agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship.
कनाडा के कनस्किस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 नेताओं के साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत बेहद उपयोगी रही। उन्होंने इस दौरान विचार विमर्श में पृथ्वी की बेहतरी के लिए अपनी आकांक्षाओं को साझा किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश के भविष्य पर G7 चर्चाओं में भाग लिया, ताकि विश्व में हो रहे परिवर्तनों के बीच इन तक सबकी पहुंच आसानी से और कम खर्च में सुनिश्चित हो सके। श्री मोदी ने दीर्घकालिक और हरित मार्ग के माध्यम से सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार छठी भागीदारी थी, और जानकारी हमारे संवाददाता से।
G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के रुख को दोहराया और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए विश्व के नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने उनसे आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक कार्यवाही को गति देने का आग्रह किया और आतंकवाद को बढ़ावा देने तथा उसका समर्थन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए समान रूप से प्रौद्योगिकी के उपयोग और इसके लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण के संबंध में भारत के अनुभव का भी उल्लेख किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चिंताओं से निपटने और इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक शासन से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देने का आह्वान किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश मीणा।
साइप्रस और कनाडा की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक क्रोएशिया यात्रा के दौरान भारत और मध्य तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होगी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा है। आइए अब हम अपने संवाददाता संजीव सिंह से बात करते हैं, जो जग्रेब में है। संजीव
जी, निखिल,
प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में और क्या क्या जानकारी है आपके पास?
निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर राजधानी जागरेब पहुंचेंगे। यहां उनका स्वागत प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच करेंगे। निखिल, यहां प्रवासी भारतीय और जो क्रोएशियाई मित्र हैं भारत के, उनमें काफी उत्सुकता है प्रधानमंत्री को देखने, और उनका बहुत जोर शोर की तैयारी है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। निखिल, ये प्रधानमंत्री का जो भारत दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 4 समझौते यहाँ होने की उम्मीद है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, संस्कृति और शिक्षा पे। विशेष रूप से जो भारतीय और क्रोएशियाई संबंध हैं, उनको उनके बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम है उसको 2030 तक बढ़ाने का भी जो एग्रीमेंट एक हो सकता है। साथ ही साथ जो जागरेब यूनिवर्सिटी है उसमें हिंदी चेयर को जारी रखने पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। निखिल, क्रोएशिया निखिल भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है, क्योंकि यह एक यूरोपीय संघ का सदस्य है और भारत EU मुक्त व्यापार समझौते में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। निखिल, जो भारत और EU व्यापार समझौता है, भारत ये चाहता है कि वो इस साल के अंत तक फाइनल हो जाए। इसी के लिए प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में साइप्रस भी गए थे और अब वो कनाडा की यात्रा के बाद क्रोएशिया आ रहे हैं। निखिल, जो क्रोएशिया है वो लगातार भारत को सपोर्ट करता रहा है। वो सुरक्षा, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें भी भारत को के अस्थायी सदस्यता के लिए सपोर्ट करता है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के जो संबंध है उनको बहुत मजबूत करेगी। जी निखिल।
जी संजीव, धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल की सेना ने ईरान में हुए हवाई हमले के दौरान वहां के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी सलाहकार और युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी की मौत की पुष्टि की है। शादमानी ने शुक्रवार को इसराइल के शुरुआती आक्रमण के दौरान पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने के बाद कार्यभार संभाला था। एक रिपोर्ट।
ईरानी समाचार एजेंसी इराना के अनुसार ईरान में युद्ध के छठे दिन पश्चिमी तेहरान में लगातार तेज धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। ईरान के नवनियुक्त सेना प्रमुख ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अब तक इसराइल के विरुद्ध केवल आत्मरक्षा में हमले किए गए थे। सेना प्रमुख जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने आगामी आक्रमण का संकेत देते हुए यह घोषणा की है कि शीघ्र ही इसराइल को सबक सिखाने के लिए बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान से बिना शर्त समर्पण करने को कहा है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने घोषणा की है कि वह पश्चिमी एशिया में अपने युद्धपोत USS निमित्ज और अन्य नौसैनिक बेड़ों की तैनाती में तेजी ला रहा है। इस बीच मिश्र ने ईरान और इसराइल दोनों से पीछे हटने का आग्रह किया है। ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए जॉर्डन के सम्राट अब्दुल्ला द्वितीय ने आग्रह किया है कि ईरान पर इसराइल के हमलों से व्यापक स्तर पर युद्ध भड़कने का खतरा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं श्रीराम शर्मा।
मौसम विभाग ने मेघालय, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से सटे मैदानी इलाकों, झारखंड और ओडिशा में अलग अलग जगहों पर आज मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया है। अगले दो से तीन दिन के दौरान बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं। भारत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि अब तक 77 करोड़ देशवासियों का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता पहचान पत्र बन चुका है।
आज देश के अंदर 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका आभा आईडी जेनरेट हो चुका है और अब इस यूनिक आईडी के साथ देश के नागरिक अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर सकते हैं और 55 करोड़ लोग अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को इससे लिंकअप कर चुके हैं। तो एक ऐसी क्रांतिकारी पहल है जिसके माध्यम से आज लोगों के लिए किसी भी समय, किसी भी स्थान से और सुरक्षित ढंग से अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना संभव हो पा रहा है। तो अब हमें किसी फाइल में रखने की जरूरत नहीं है, हम अपने फोन पर ही उसको जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं।
देश के जूनियर कंपाउंड तीरंदाजों ने कल सिंगापुर में एशियाई कप लीग 2 में अपना दबदबा कायम रखते हुए पुरुष और महिला दोनों व्यक्तिगत स्पर्धाओं के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में शीर्ष तीरंदाज कुशल दलाल ने बांग्लादेश के हिमू बछार को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह पक्की की। व्यक्तिगत महिला कंपाउंड वर्ग में भारत का स्वर्ण और रजत पदक तय है। इससे पहले टूर्नामेंट में भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान 2 अंडर-21 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। पुरुष और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आज से चेन्नई में शुरू होगा। 10 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन तमिलनाडु हॉकी यूनिट कर रहा है, जिसमें 40 से अधिक आयु वर्ग के पुरुष और 35 से अधिक आयु वर्ग की महिलाएं भाग लेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
धन्यवाद निखिल। ईरान इसराइल संघर्ष, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और ईरान से भारतीयों की वापसी को अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, ट्रंप बोले ईरान के पूरे आसमान पर कब्जा, बिना शर्त करे सरेंडर। पंजाब केसरी ने लिखा है, पांचवें दिन भी जारी है बारूदी घमासान, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले जारी। नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत ने जारी की एडवाइजरी, तेहरान से दूर चले जाएं भारतीय। राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता, देशबंधु और दैनिक ट्रिब्यून की आज की बड़ी सुर्खी है, 6 दिन में एयर इंडिया की 66 उड़ानें रद्द। हिंदुस्तान के अनुसार इस वर्ष 50 अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी, जिनमें सिर्फ जनरल और स्लीपर श्रेणी के कोच होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को प्रमुखता दी है, बैंक डिपॉजिट में हिस्सेदारी घटी, म्यूचुअल फंड खातों की संख्या बढ़ी। जनसत्ता और देशबंधु ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को स्थान दिया है, भीड़ को सड़कों पर हंगामा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दैनिक जागरण, हरिभूमि और वीर अर्जुन की खबर है, अमरनाथ यात्रा में उपलब्ध नहीं होगी हेलीकॉप्टर सेवा। राजस्थान पत्रिका की खेल पन्ने की सुर्खी है, भारतीय जूनियर तीरंदाजों ने एशिया कप के फाइनल में पहुंचकर पदक पक्के किए।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने सहित विभिन्न मुद्दों पर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कनाडा के कैनानस्किस में G7 शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं और आकांक्षाओं का उल्लेख किया, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और शांति के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान। ईरान और इसराइल में छठे दिन भी संघर्ष जारी, ईरान के सर्वोच्च नेता के करीबी सलाहकार अली शादमानी की मौत। मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान। और तीरंदाजी में सिंगापुर में जूनियर एशियाई कप लीग 2 में भारतीय पुरुष और महिला टीमें फाइनल में 2 पदक पक्के। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।